الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران کی آیت نمبر 10 سے ہم آج شروع کر رہے ہیں. پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آیات متشابہات کے حوالے سے بات چل رہی تھی, اس میں دلوں کی کجی کے اوپر بات ہوئی تھی, اور یہ بات ہوئی تھی کہ جو لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ, اور جو علم کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں وہ, اس بات کو مان لیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے, اور وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ اس کے حقیقت کیا ہے, اس کی تعبیل کیا ہے. اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ان کو نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. وَأُولَئِكَهُمْ وَقُودُ النَّارِ, اور یہی لوگ ہیں کہ جو آگ کا ایندھن بنیں گے. اب سوال یہاں یہ ہے کہ الذین کفروا سے مراد کون ہے؟ الذین کفروا سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو آیات متشابہات کی وجہ سے خدا کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں, جس کی اوپر بات چل رہی ہے کہ ان کے دلوں میں کجی ہے, اس لیے وہ باتوں کو مانتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, اور اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے گی تو ہم مانیں گے. اس کو میں اپنے زمانے میں بھی دیکھتا ہوں, اس جرم کو, کہ ہمارے ہاں اب یہ تصور پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بات جب مجھے سمجھ میں آئے گی, جب میری پسند کی مطابق ہوگی تب مانوں گا. وہ حقیقت ہے, وہ صحیح ہے, وہ غلط ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں, میں تو اس وقت مانوں گا جب مجھے سمجھ میں آئے گی. یہ ہر چیز کے بارے میں ممکن نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ذہن دیا گیا ہے وہ خاص طرح کی چیزوں ہی کو سمجھ سکتا ہے, ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا. اس کو میں دلچسپ ایک آپ کو چیز نظر آئے گی انسانی علم کے اندر, کہ بہت شروع میں جب, جو فلسفہ ہمارے پاس ریکارڈ پہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں, تو وہ اس دنیا کی حقیقت جاننا چاہتے تھے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. کسی نے کہا پانی ہے, کسی نے کہا آگ ہے, کسی نے کہا نمبر ہے, اور پھر چلتے چلتے بات پلوٹائنس تک پہنچی تو اس نے کہا کہ دنیا کی حقیقت واحد ہے, ایک ہے. ہمارے صوفیہ نے اسی کو لے لیا اور انہوں نے احدیت کو حقیقت دنیا کی بتایا, کہ ساری چیزیں اسی احدیت سے بنی ہیں. اس نے 6 تنزلات کے ذریعے سے, 7 مراتب کے ذریعے سے اس کائنات کی شکل اختیار کی ہے. یہ زمانہ گزر گیا, لمبے عرصے تک صوفیہ یہ بات منواتے رہے, مانتے رہے. عہد حاضر میں کیا ہوا؟ عہد حاضر میں یہ ہوا کہ آئنسٹائن اور بوہر وغیرہ کی, ہبل وغیرہ کی تحقیقات کے بعد تصور وجود میں آیا بگ بینگ کا. تو بگ بینگ میں کیا چیز مانا گیا؟ کہ اس کی بھی ایک سنگولیرٹی تھی. سنگل کا لفظ جو ہے سنگولیرٹی تھی, احدیت, دبن, احد, ساری کائنات اس سے آغاز ہوئی, اس میں دھماکہ ہوا, کائنات بن گئی. تو یہ دونوں باتیں کیا بات کی نشاندہی کر رہی ہیں؟ کہ خواہ مادی اعتبار سے سوچیں یا روحانی اعتبار سے, فلسفیانہ انداز سے سوچیں یا سائنسی اعتبار سے سوچیں, دونوں صورتوں میں انسان ایک طرح سے سوچتا. دونوں سوچیں سنگولیرٹی تک پہنچی, وہ تصور والی سنگولیرٹی ہو یا فلسفے والی ہو یا سائنس والی ہو. تو یہ انسانوں کی سوچ کی مشابہت ہے. انسان اپنے, جو اللہ نے اس کو ذہن دیا ہے یا قدرت نے جو اس کو ذہن دیا ہے, اسی ذہن کے تحت چیزوں کو دیکھتا ہے, اسی ذہن سے سوچتا ہے. اس کی ایک لمٹ ہے, اس کی ایک لاجک کی لمٹ ہے, اس کے حواس کی ایک لمٹ ہے, اسی کے تحت اس نے سوچنا ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. مثلا اللہ تعالیٰ کے الفاظ کلمہ کن والے کس طرح چیزوں کی شکل اختیار کر لیتے تھے, میں آپ نہیں سمجھ سکتے, ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. ہماری جو فزکس ہے, جو بایولوجی ہے, جو کیمسٹری ہے, جو نفسیات ہے, اس میں یہ بات فٹ ہی نہیں بیٹھتی. اس لیے जिसने भी इन्हीं पहलुओं से सोचा और खुदा की बात के तौर पर नहीं सोचा, उन्होंने कलमाए कुन के ऊपर ईमान नहीं रखा, उन्होंने एहदियत की तरफ चले गए, दवन की तरफ चले गए और सिंगुलैरिटी की तरफ चले गए, जिन्होंने भी कलमाए कुन पर ईमान नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने सोचा अकल से, अपनी नफ्सियात से, अपनी फिज़िक्स से, अपनी बायोलॉजी से, तो वो उस तरफ चले गए। जबकि ईमान वाला जो है वो क्या करता है कि ये अलूम अपने साथ साथ चलाता चला जाता है, उसको उनको भी मान रहा होता है, उसमें भी तहकीक कर रहा होता है, लेकिन साथ खुदा की जो बातें होती हैं उनको अलग से इस तरह से मान रहा होता है कि ये मेरे खुदा का फरमान है, मुझे समझ नहीं आ रहा तो क्या हुआ, मेरे अल्लाह का फरमान है, मैं इसको मान लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ये वो जो तसव्वुर है। अब ये जितनी चीज़ें कुरान ने बयान की हुई हैं, ऐसा नहीं कि वो हमारी फिज़िक्स से टकराती हैं, तो इधर मैं फिज़िक्स के लैब में बैठकर तो फिज़िक्स की बात मानूं और खुदा की बात का इनकार करूं, और खुदा की दुनिया में जब आऊं तो खुदा की बात मानूं और फिज़िक्स की बात का इनकार करूं, ऐसा नहीं होता। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, जो हमारे दायरे में आती ही नहीं हैं बातें, उसको कुरान ने ईमान का तकाजा किया है, जो ना फिज़िक्स के दायरे में आती हैं, ना केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी, ना नफ्सियात, ना एंथ्रोपोलॉजी, ना किसी सोशियोलॉजी, किसी में भी नहीं आती, ना प्योर साइंसेज में, ना ह्यूमैनिटीज़ में, किसी में नहीं आती, वो आती ही अलग हैं, वो ईमानियात ही का हिस्सा है। तो वो मिसाल के तौर पर अब अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नत होनी है, तो जन्नत होनी है, क़यामत होनी है, दोज़ख होनी है, ये किस फिज़िक्स के बात से टकराती हैं, किस बायोलॉजी से टकराती हैं, किसी से नहीं। तो इसलिए हमारे जो साइंसदान थे उनको अपना ईमान कायम रखते हुए साइंस बनानी आती थी। दौरे जदीद ने क्या किया कि इन चीज़ों को भी साइंस की रोशनी में देखने की कोशिश की, फिज़िक्स की रोशनी में, बायोलॉजी की रोशनी में। नतीजा ये निकला कि जो चीज़ें आँखों से, मसलन खुशबू आँखों से नहीं देखी जा सकती, या देखी जा सकती, और आवाज़ ज़ुबान से नहीं चखी जा सकती, जो कानों ने करना है वो कानों ने करना है, जो दिमाग ने करना है वो दिमाग ने करना है। तो हमने क्या किया कि ईमानियात को दिमाग की चीज़ मानने के बजाय हवास की चीज़ मानना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ख़राबी पैदा होती चली गई। तो अब ये जो लोग हैं, अब वो तकादा करेंगे कि अच्छा हमें बताया जाए जी कि वही क्या होती है। चुनाचे मुतालबा क्या था अहले किताब का, कि आसमान से एक फरिश्ता उतरे जिसके हाथ में किताब हो रोशन, और वो उसमें से पढ़ के सुनाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं ये कर दूँ तुमको, अगर जादू हो गया, हमारी आंखों को धोखा हो गया, तो उसके बाद तुम पर वही की हकीकत खुल जाएगी। वही की हकीकत अल्लाह ने बताई भी कि तीन तरह से बस मैं वही करता हूँ, कुछ चौथी किस्म नहीं है। एक वही की किस्म यह है कि मैं, मेरी आवाज़ आएगी किसी चीज़ के ओर से, जैसे हज़रत मूसा के साथ हुआ। यह वही की एक किस्म है कि हज़रत मूसा को आवाज़ आई, क्या मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? उन्होंने कहा कैसा है। उन्होंने कहा पाँव में क्या? उन्होंने कहा जूती हैं। आपने कहा उतार दो, वादी मुकद्दस है, जूते उतार के आओ। अब जो कुछ हो रहा था वो किसी झाड़ी के पीछे से या आग के पीछे से आवाज़ आ रही थी। वही का एक तरीका ये है। दूसरा वही का तरीका यह है कि अल्लाह ताला दिल में बात डाल देते हैं डायरेक्ट, कोई और ज़रिया इस्तेमाल नहीं होता, बस दिल में बात डाल दी जाती है। तीसरी वही का तरीका जो अल्लाह ने बताया वो ये कि फ़रिश्ता पैगाम लेके आता है। ये तीन तरीके हैं, लेकिन हमारे रवायत नकल करने वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथा तरीका निकाला है कि घंटियों की आवाज़ आती है, उसके बाद वही आती है। ये चौथा तरीका अल्लाह ताला ने बयान नहीं किया, हमारे रवायत करने वालों ने, तराशने वालों ने चौथा तरीका भी ईजाद कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले घंटियों की आवाज़ आती थी, फिर वही आती थी, और आप घबरा जाते थे, पसीना छूट जाता था, आपको परेशानी होती थी। जबकि अम्बिया की जो दास्तान अल्लाह ताला ने बताई है, हज़रत मूसा तूर पे हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे हैं और वो मज़े मज़े से कहानियाँ सुनाते जा रहे हैं, जी मैं असा से ये करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो उनको तो पसीने नहीं छूट रहे। खुद सूरह नजम में जो अल्लाह ताला बता रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही का वाक़या, तो उसमें वो इत्मीनान से अल्लाह ताला मा जागल बसर हुआ, माँ आपका ना दिल में कोई मसला पैदा हुआ, ना आँखें भटकी, कुछ भी नहीं हुआ, माज़ल्ला साहिब हुकुम मा खबर। तो आप पूरे इत्मीनान से वाज़े तौर पर एक एक चीज़ को देख रहे थे। तो लेकिन हमारे दोस्तों ने नबूवत की एक चौथी किस्म भी बना दी। तो बहरहाल ये जो इस तरह की जो बातों के पीछे लगने वाले हैं फिर वो बात मानते नहीं हैं। मेरा बहुत सारे मुल्हिद दोस्तों के साथ मुकालमा हुआ है, तो जो लोग इस चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं ये हमें लैब में साबित करके दिखाएं, वो नहीं मान सकते। अलबत्ता जो अकली तौर पर ज़हनी तौर पर चीज़ों को तस्लीम करने वाले हैं उनको बातें जब समझ आ जाती हैं तो वो मान लेते हैं। तो फरमाया कि जिन्होंने इस वजह से कि उनके दिलों में कजी है और वो मुतशाबहात और इस तरह की चीज़ों की हकीकत जाने बगैर मानने को तैयार नहीं हैं, तो इनसे कह दो कि उनके माल और उनकी औलाद उनके काम नहीं आएगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये अल्लाह तआला ने कई जगहों पे जुमला बोला है, इसके मानी समझ लेने चाहिए। एक इसके मान एक आदमी ये ख्याल करता है बाज़ुकात कि मेरे पास जो पैसा है, मुझे जो अल्लाह ने इतनी औलाद दे रखी है, तो मैं अल्लाह का पसंदीदा आदमी हूँ, बाज़ुकात ये ख्याल आ जाता है। तो फरमाया कि नहीं, ये चीज़ तुम्हारे काम नहीं आएगी। दूसरा पहलू ये होता है कि अच्छा मेरे पास इतना कुछ है, कुछ ना कुछ दे के काम करा लूँगा, मैं पैसे दे के जान छुड़ा लूँगा, को और काम करके जान छुड़ा लूँगा, मेरी बादशाहत है, मेरे पास इकतदार है, तो मैं आराम से ये काम कर लूँगा। तो फरमाया कि नहीं, क़यामत वाले दिन ये चीज़ें काम नहीं आएंगी, ना तुम्हारी औलाद की सिफारिश होगी, ना तुम्हारी औलाद तुम्हारे मुकाबले में रख कर कोई काम किया जा सकेगा, तो ये चीज़ें जो हैं ये तुम्हारे काम नहीं आएंगी, ना माल काम आएगा ना कुछ। इन्हीं चीज़ों की वजह से आदमी गुमराह भी होता है कि वो ख्याल करता है कि मुझसे अल्लाह राज़ी है, इसका मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे अल्लाह ने पैसा दे रखा है, मुझे अल्लाह ने औलाद दे रखी है, तो अल्लाह खुश है मुझसे। हालांकि ये खुशी की निशानी नहीं है, अल्लाह ने एक तकदीर लिखी है इंसानों की, उनके लिए इम्तिहान का ज़रिया बनाया है इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें जो मिली होती हैं तकदीर की वजह से मिली होती हैं। फ़िरौन को जो बादशाहत मिली थी तो इस वजह से नहीं कि अल्लाह उससे राज़ी था, और हज़रत मूसा को जो बादशाहत नहीं मिली हुई थी तो इस वजह से नहीं कि अल्लाह उनसे नाराज़ था, इस वजह से नहीं था। तो वो तकदीर है, एक को फ़िरौन बनाना ही बनाना था अल्लाह ने तकदीर के मुताबिक, और एक को मूसा बनाना था। हज़रत मूसा असा लिए हुए फिर पहले मिस्र की गलियों में दावत तबलीग का काम करते रहे, धक्के खाते रहे, और उधर सहरा में चले गए, और सहरा में 30 साल तक अपनी कौम को छोड़ दिया, वो सब कुछ करते रहे। और फ़िरौन पहले दिन से लेकर डूबने तक शाही महल में रहा, उसके हुक्म चलते रहे, उसका सब कुछ हुआ। तो इसकी वजह ये नहीं थी कि अल्लाह ताला उससे राज़ी था, वो तकदीर के मुताबिक उसको फ़िरौन होना था, सो वो हो गया हुआ था। ऐसे ही हमें जो औलाद मिलती है, जो पैसा मिलता है, जो नहीं मिलता, ये सारा कुछ अल्लाह के राज़ी या नाराज़ होने की अलामत नहीं है, वो तकदीर के मुताबिक जो रोज़े अज़ल को लिख दिया गया वो होकर रहना है। तो कितने ही नफीस नेक लोग हैं कि जो इन नेमतों से महरूम होते हैं, और कितने ही बुरे लोग हैं जो इन नेमतों में खेल रहे होते हैं, और दूसरा हिसाब भी होता है, कितने ही बुरे लोग हैं जिनको ये नेमतें हासिल नहीं होती, और कितने ही नेक लोग हैं जिनको ये नेमतें हासिल होती। तो ये अल्लाह ताला ने दूसरे असूल पर दे रखा है, वो आजमाइश का असूल है, और उसके लिए एक तकदीर अल्लाह ने लिख रखी है। तो क़यामत वाले दिन ये चीज़ें काम नहीं आनी हैं। और दुनिया में भी ये बात ना समझो कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास औलाद है, अल्लाह उससे राज़ी है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें यूँ ना समझो कि तुम्हारे काम आने की हैं, ऐसा नहीं है। वउलाइका हुम वकूदुन नार, तो ये जो पैसे वाले और औलाद वाले हैं यही कल दोज़ख का ईंधन बनेंगे। ये फिर उसी असूल पर मैं कह रहा हूँ जो सियाक व सबाक में, ये नहीं कि तमाम औलाद वाले और पैसे वाले दोज़ख में जाएंगे, उसमें उस्मान गनी भी हैं, उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हैं, तो वो पैसे वाले हैं लेकिन नेक और साले लोग थे। सूरह बनी इसराइल में जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ अल्लाह ताला ने इसको वाज़े किया है कि रिज़्क़ का कानून क्या है, उसके मुताबिक मिलता रहता है। तो अब ये अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने अपनी किताब उतारी है हय्यो क़य्यूम होने की वजह से, और पहले मैंने तौरात उतारी थी, इंजील उतारी थी, और अब मैंने ये फुरकान उतारा है। तो जो लोग नहीं मानेंगे उनको शदीद अज़ाब का सामना करना पड़ेगा, और अल्लाह की ज़ात है जिस पर कोई चीज़ मख्फी नहीं है, इसलिए वो क़यामत बरपा करेगा, सबको पूछेगा, और वो अज़ीज़ व हकीम है। और इसी ज़ात ने जिसने ये दुनिया बनाई है, हय्यो क़य्यूम है, तौरात और इंजील नाजिल की थी, उसी ने अब ये किताब नाजिल की है। और इसमें दो तरह की आयतें हैं, एक मोहकम आयतें हैं और एक मुतशाबे आयतें हैं। जिन लोगों के दिलों में कजी होती है वो मुतशाबे के तावील के पीछे पड़ जाते हैं फितने के लिए और तावील के लिए, और जो नेक लोग हैं जिनको दुनिया की हकीकत का, अपने इल्म की हकीकत का पता है, वो सीधा सीधा कहते हैं जी कि अल्लाह की तरफ से है तो हम मान लेते हैं, बस वो उसकी हकीकत जानने के पीछे नहीं पड़ते। और जो लोग इस वजह से कुफर करेंगे उनको जान लेना चाहिए कि उनके माल औलाद पैसा काम नहीं आएगा। मिन अल्लाह शैया, अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के हजूर में क़यामत वाले दिन, यानी मेरे और आपके लिए पैसा असरअंदाज हो जाता है हमारे ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं अगर जज हूँ या थानेदार हूँ तो आप मुझे रिश्वत देकर लालच देकर बच सकते हैं, देखो मैं इतना पैसा दे दूँगा सारी ज़िंदगी आराम से बैठ के खाओगे, अल्लाह को तो कोई मोहताजी नहीं है ना, वो पैसा जो भी हमने देना है वो उसके हुक्म से बना हुआ है, वो हुक्म देगा तो ख़त्म हो जाएगा, हुक्म देगा तो कायम रहेगा। तो अल्लाह ताला के यहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल होने की नहीं है कि वहाँ कोई असरअंदाज होकर अल्लाह ताला की बात को तब्दील कर दें या अल्लाह के फ़ैसले को तब्दील करा दें, ऐसा कुछ नहीं होना। तो इसलिए ये बात वाज़े रहनी चाहिए कि जो कुछ इस कायनात में खुदा ने डिज़ाइन कर दिया है उसको मानना पड़ेगा, आपको समझ आए ना आए, आपको पसंद आए ना आए, आपको काबिल कबूल हो या ना काबिल कबूल हो, वो अब हो गया है। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो पाकिस्तान में जो कुछ है मुझे वो कबूल करना है, यहाँ के कवानीन की भी पैरवी करनी है, यहाँ के समाज की भी पैरवी करनी है। हाँ, तब्दील करने की कोशिश कर सकता हूँ क्योंकि ये खुदा नहीं, लेकिन खुदा को हो, खुदा के निज़ाम को हम तब्दील नहीं कर सकते, उसने जो कर दिया हुआ है सो कर दिया हुआ है। हम खुदा की दुनिया में रहते हैं, ये खुदा की बस्ती है जिसमें उसने अपने कवानीन, अपने ज़ाब्तों के मुताबिक इसको बनाया है। जो इसमें छेड़खानी करेगा, उसको तब्दील करने की कोशिश करेगा, वो मार खाएगा, और जो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन से भागेगा वो भी मार खाएगा। ये हो नहीं सकता कि वो कामयाब हो जाए। आगे फरमाया, कदा भी आले फिरौन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आले फिरौन का मामला हुआ था। अब आले फिरौन के साथ क्या हुआ था कि वो भी अपने माल की वजह से गुमराह हुए, उन्होंने हज़रत मूसा की बात मानने से इनकार कर दिया, सो पकड़ लिया गया। अब ये बड़ी दिलचस्प है बात कि अल्लाह ताला ने अहले किताब को आले फिरौन से तशबीह दी है। कई चीज़ें मुश्तरक हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ ये कमाल होता है कि बस जुमला बोल देते हैं सादा सा, पहलू कई होते हैं उसके अंदर। हज़रत मूसा की कौम इसराइल थे, सानवी तौर पर फिरौन मुखातब था, ठीक। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम कुरैश थे, सानवी तौर पर अहले किताब मुखातब थे, दिलचस्प बात। हज़रत मूसा मौजज़ात करते तो वो कहते ये तो कुछ नहीं, अपने रब से दुआ करो टल जाए, बाद में इनकार कर देते थे, उसकी पीछे ये नहीं गौर करते थे कि अल्लाह की तरफ से आ रहा है, बस ये कहते थे कि, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि हज़रत मूसा की नहुसत है, नौज़ बिल्लाह। जो बहाने ये बनाते थे यहूद, वही फिरौन बना रहा था उन नौ मौजज़ात के साथ। तो बहुत मुबासिल है दोनों चीज़ें, ये पैसे की वजह से अकड़े हुए हैं, फिरौन भी पैसे की वजह से अकड़ा हुआ था, और वो ख्याल करता था कि मैं पैसे वाला हूँ तो बस कुछ नहीं होगा, अल्लाह मुझसे राज़ी है, बल्कि अपने आप को खुदा समझता था। तो यहाँ भी यही सूरत हाल है। तो कदा बे आले फिरौन, तो बिल्कुल आले फिरौन की तरह, आल जो है वो जब इस तरह के मौके पर आए तो उसका मतलब कौम भी होता है और औलाद भी हो सकता है, यहाँ ये कौम के मानी में है। ये याद रखना चाहिए कि अहले बैत, अहल और आल तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। अहल का मतलब घर वाले होता है जिसमें बीवी बच्चे शामिल होते हैं, अहले बैत का मतलब सिर्फ बीवियाँ होता है, और आल का मतलब औलाद भी हो सकता है और फॉलोअर्स भी हो सकते हैं या कौम भी हो सकती है। तो आले फिरौन का मतलब यह नहीं है कि फिरौन की औलाद, बल्कि फिरौन की कौम, और अहल में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, कौम भी शामिल हो सकती है और घर वाले भी, यानी कौम कबीला के मानी में, ना कि कौम इस माने पाकिस्तानी। मसलन हम किसी की आल नहीं हैं, पूरे पाकिस्तानी, लेकिन हमें शाब कहा जाएगा, यानी हम शाब हैं, पाकिस्तानी सारे के सारे शाब हैं। आल ये कई लोगों की है, कोई ममदोट की आल में से हैं, कोई जाट की आल में से हैं, कोई किसी आल में से हैं, आलें कई हैं, कबीले कई हैं, लेकिन हम शाब हैं, हम आल नहीं हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हम सारे के सारे पाकिस्तान में फ़र्ज़ कर लीजिए कि सिर्फ ममदोट होते मसलन या जाट होते, तो फिर हम हमारे अंदर से कोई होता तो उसको हम आल कह सकते थे कि ये हम इसकी आल हैं। वल्लज़ीना मिन कबले, तो इनका मामला भी फिरौन जैसा है और इनसे पहले लोगों जैसा है। कज़्ज़बू बे आयातिना, इन सब ने हमारी आयतों को जुटलाया। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला सज़ा देने में सख्त है। अब फरमाया कि जो मेरी आयतों का इनकार करेंगे उनका हाल फिरौन और उससे पहले लोगों को जो साथ जो हुआ आयतों का इनकार करने की वजह से, वही इनका हाल होगा, आले यानी इन अहले किताब का। असल में यहाँ अभी तक अल्लाह ताला ने अहले किताब को इतना नुमाया नहीं किया, लेकिन नुमाया है वो अपनी बातों की वजह से जो बातें चल रही हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि कुरैश भी शामिल है और अहले किताब भी शामिल है। तो फरमाया कि आले फिरौन की तरह इनको भी आयतों के जुटलाने की वजह से सज़ा मिलेगी, जैसे आले फिरौन को मिली या उससे पहले लोगों को मिली। तो आले फिरौन का हवाला भी अहले किताब की वजह से दिया गया और वल्लज़ीना मिन कबलिहिम को मख्फी रखा गया, जो भी पुरानी कौमें हैं सारी मुराद हैं, लेकिन आले फिरौन का जिक्र कर दिया गया ताकि यहूद को, अहले किताब को अपनी इस दास्तान से वाकफियत ज़्यादा थी, वो इसकी तरफ तवज्जो करें कि जो फिरौन का हाल हुआ वही तुम्हारा होगा। कज़्ज़बू बे आयातिना, हमारी आयतों को झुठलाया। तकज़ीब जो है ये, इसका मतलब जुर्म के तौर पर जब ये इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है कि दिल में तो पता है कि ये बात ठीक है लेकिन मैं उसको जुठला रहा हूँ। कज़्ज़बू का मतलब ये होता है। तो कज़्ज़बू बे आयातिना का मतलब है कि जिन्होंने हमारी आयतों को जुठलाया इसके बावजूद कि समझ रहे थे कि ठीक बातें सही हैं। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। ये अल्लाह का ताला का ज़ाबता है। अल्लाह का ज़ाबता दो हैं गुनाहों के एतबार से, बल्कि तीन कह लीजिए अगर हम ये कुरान में बयान नहीं हुआ तीसरा, लेकिन मालूम होता है कि ये चीज़ मौजूद है, बाज़ मकामात से इशारा सा निकलता है लेकिन लफ्ज़ों में बयान नहीं हुआ तीसरा ज़ाबता। पहला ज़ाबता ये है कि अगर रसूल के ज़माने में लोग अल्लाह की आयतों का इनकार कर देंगे, रसूल का इनकार कर देंगे, तो सज़ा पाएंगे दुनिया के अंदर, ठीक है। पहला ज़ाबता ये है। दूसरा ज़ाबता ये है कि अगर दुनिया में सज़ा नहीं मिली, एक इस वजह से कि रसूल के ज़माने में होने के बावजूद बच गए किसी वजह से, जैसे हज़रत ईसा के ज़माने में बच गए लोग, तो उनकी सज़ा और तरह से होगी। फ़र्द फ़र्द को सज़ा नहीं मिली लेकिन आखरत में सज़ा मिलेगी, और जो रसूल के ज़माने के लोग नहीं हैं उनको भी आखरत में सज़ा मिलेगी। तो दूसरा कायदा ये हुआ कि गुनाहों की सज़ा आखरत में मिलेगी। पहला कायदा ये हुआ कि रसूल के ज़माने में अज़ाब आ जाएगा, सज़ा मिलेगी। दूसरा कायदा यह है कि जिनको दुनिया में किसी वजह से सज़ा नहीं दी जा सकी, आखरत में सज़ा लाजमन मिलेगी। और तीसरा ज़ाबता ये है कि अल्लाह ताला एक मुकाफात का अमल चलाते रहते हैं। यानी ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पर मैंने गुनाह किए तो फ़ौरन तो अल्लाह ताला ना पकड़े, लेकिन किसी ना किसी तरीके से पकड़ लेंगे, कोई सज़ा मिल जाए, कोई बुरा अंजाम हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो एक ढीला डाला सा, यानी हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि किस तरह से होता है, लेकिन चलता रहता है। उसके लिए अल्लाह ताला ने पूरे मुआशरे को डिज़ाइन किया हुआ है। मसलन हम लोग हैं, थाना है, पुलिस है, कचहरी है, अदालतें हैं, कोतवाल है, ये काम करते रहते हैं। मैंने कत्ल कर दिया है तो पकड़ा जाऊँगा, बच जाऊँगा तो क्यामत दिन पकड़ा जाऊँगा, लेकिन दुनिया में कत्ल की सज़ा मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से जराइम जो भी हो रहे होते हैं उनका अल्लाह ताला ने एक मुकाफात का अमल ऐसा बनाया हुआ है कि वो कहीं ना कहीं हम पकड़े जाते हैं, और कहीं मासूम भी पकड़े जाते हैं। फिर इसमें ज़ाहिर है कि इंसान गलती कर जाते हैं, तो मासूम को अगर जानबूझ कर पकड़ा गया तो क़यामत वाले दिन पकड़ने वाला भी सज़ा पा जाएगा। तो ये तीन ज़ाबते हैं जो चलते रहते हैं, लेकिन तीसरा ज़ाबता ऐसा नहीं है कि हर गुनाह की सज़ा मिल जाए, ऐसा नहीं। वो क़यामत, असल में गुनाहों की सज़ा आखरत वाले दिन मिलनी है। तो फरमाया कि अहले किताब का, इन काफरों का जो अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं, इनके माल, इनकी औलाद, इनके काम नहीं आएगी। आखिरत में तो ये दोजख का ईंधन बनेंगे ही, लेकिन दुनिया में भी इनको सज़ा मिल सकती है क्योंकि इनका मामला फिरौन जैसा है। इन्होंने इनकार किया तो हमने उनको पकड़ लिया था। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला सज़ा देने में सख्त है। ये जुमला बड़ा हमारी जो उर्दू और अरबी का मिजाज का फ़र्क है, ये उसकी वजह से है कि हम तर्जमा कर ही नहीं सकते इसका, सज़ा देने में सख्त है। इसका मतलब बज़ाहिर जुमला सुनते ही ऐसा लगता है कि मैंने छोटी सी बात की तो अल्लाह ने बड़ी सारी सज़ा दे दी, सज़ा देने में सख्त है। ये मतलब नहीं है, मतलब यह है कि जिसकी जो सज़ा बनती होगी वो लाजमन मिलेगी, उसमें नरमी नहीं की जाएगी। यानी मेरे अंदर तरस आ सकता है, अदालत ने फैसला किया कि सज़ाए मौत होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा चलो यार माफ़ कर दो, अल्लाह ताला के अंदर ये नरमी नहीं आएगी। जो सज़ा बनती होगी वो लाजमन दी जाएगी, कोई उसका हाथ रोक नहीं सकेगा, कोई उसको नरम नहीं कर सकेगा, कोई उसको ऐसी हमदर्दी या ऐसा तरस पैदा नहीं होगा जो जुल्म पैदा कर दे। यानी अल्लाह ताला कोई ऐसा तरस किसी पर नहीं खाएंगे जिससे जुल्म वजूद में आए, जो अदल के ख़िलाफ़ हो। तो शदीदुल इक़ाब का मतलब ये है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ खुदा के बारे में तसव्वुरात गलत हैं, वो उनको आहिस्ता आहिस्ता ज़हनों से निकाल देना चाहिए कि अल्लाह ताला बड़े मेहरबान हैं, वो दोज़ख में कैसे डाल सकते हैं। ये हमारे ख्यालात हैं, अल्लाह ताला ने जो बात कही है वो उसको मानना पड़ेगा। अब ये ज़ाहिर है कि आखिरत की बात अल्लाह ने कर दी, दुनिया में पकड़ने की बात कर दी। पहले कह दिया कि ये दोज़ख का ईंधन बनेंगे, अब कह दिया कि अल्लाह ताला इनको गुनाहों में पकड़ लेगा जिस तरह फ़िरौन को पकड़ा था। ये दुनिया का मामला था। अब दुनिया का ये मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कैसे होगा, उसको वाज़े किया है। यानी पहले यह बताया कि मैंने किताब नाजिल की थी, पहले भी की, अब भी की, और कुछ लोग आयात मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए इनकार कर रहे हैं। इन इनकार करने वालों को आख़रत में सज़ा मिलेगी, दोज़ख में जाएंगे, और दुनिया में भी सज़ा मिलेगी आले फ़िरौन की तरह। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो आले फ़िरौन के साथ हुआ, उसमें क्या मुशाबहत है या क्या फ़र्क है, वो आगे बताया अल्लाह ताला ने। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सत्तुग़लबून, फरमाया कि इन काफ़रों से कह दो कि तुम अनकरीब मग़लूब हो जाओगे। ठीक है, यह अब दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़रों की सज़ा, सत्तुग़लबून, कि तुम अनकरीब मग़लूब कर दिए जाओगे। ये इशारा है जो कुरान मजीद में कानून बयान हुआ है कि लाग़लिबन्ना अना व रुसुली, मैं और मेरे रसूल गालिब रहेंगे, उसकी तरफ भी इशारा है। और आले फ़िरौन के साथ जो कुछ हुआ था वो ये कि मूसा गालिब आ गए, फ़िरौन गर्क कर दिया गया, ऐसा ही तुम्हारे साथ हो कि फ़िरौन की तरह तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तुम गर्क कर दिए जाओगे और नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ जाएंगे। तो इन काफ़रों से कह दो कि तुम अनकरीब मगलूम कर दिए जाओगे। वह तो शरूना इला जहन्नम, और सिर्फ़ इतना ही नहीं होगा कि दुनिया में मगलूब कर दिए जाओगे, बल्कि क़यामत वाले दिन जहन्नम की तरफ भी हाँके जाओगे, वहाँ इकट्ठे किए जाओगे दोजख में। व बेसल मिहाद, ये नहायत ही बुरी जगह है रहने के लिए। तो अब अल्लाह ताला ने बता दिया कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकरीन के साथ क्या होगा। ये तीनों कौमें जो थी नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, उन तीनों के साथ यही हुआ, यहूद, नसारा और कुरैश, कुफार कह लीजिए, मुशरिकीन कह लीजिए, इन तीनों के साथ सत्तुग़लबून का अमल हुआ। और जिन्होंने इनकार किया और कुफर की हालत में दुनिया से चले गए, वो क़यामत वाले दिन जहन्नम में भी इकट्ठे किए जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और हज़रत मूसा की दावत, और दोनों की कौमों का अंजाम मिलता जुलता सा है। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दास्तान या हयात तैयबा दो रसूलों से मिलती है, दो नबियों से, एक हज़रत मूसा और एक हज़रत यूसुफ़। हज़रत यूसुफ़ की तो एक ही सूरा में पूरी कहानी सुना दी गई है, लेकिन हज़रत मूसा के मुख्तलिफ मकामात पे तफसील ज़्यादा की गई है बाकी अम्बिया के मुकाबले में। आप हज़रत इब्राहिम की इतनी तफसील नहीं देखेंगे जितनी हज़रत मूसा की देखेंगे। वजह यही थी कि आईना दिखाया जा रहा था कि, बल्कि अगर आप सूरा मुज़म्मल में देखें तो आपको जब मबूस किया गया है तो कुरैश को पहली पहली जो धमकियां दी जा रही हैं उसमें भी यही है कि तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा गया है, शाहिदुन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने फिरौन की तरफ रसूल भेजा था। तो ये वो मुशाबहत है जो जहाँ पर भी आपको सूरह नाम में भी नज़र आ रही है, ये भी इब्तदाई सूरतों में से है, तो यहाँ पर भी उसी तरह का फिरौन ही का जिक्र है, क्योंकि फिरौन, कुरैश, मूसा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिलते जुलते दोनों के मामलात हैं। तो अब जो ऊपर बात कही थी कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम, उन दोनों पहलुओं से देख लीजिए कि आले फिरौन की बादशाहत काम नहीं आई, अगर कर दिए गए तो कुरैश की बादशाहत, कुरैश की सरदारियाँ, कुरैश का पैसा, मक्का मौज़मा की तौलियत, ये उनके काम नहीं आएगी। जो हाजियों को पानी पिला रहे हैं, कुरान ने बयान भी किया, सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं, वो उनकी कोई काम नहीं आएगी। काम आएगा तो ईमान काम आएगा, इस रसूल पर ईमान लाना पड़ेगा। अब सवाल पैदा हुआ कि इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कर दी कि अच्छा फिरौन जैसा मामला होगा, निशानी क्या है, सबूत क्या है? फरमाया कद काना लकुम मायतुन फ़ी फ़ियतैन इल्तक़ता फ़ियतुन तुकातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व अख़रा काफ़िरा यरौनहुम मिस्लैही रायल ऐन। तो फरमाया कि तुम इसकी मिसाल देख चुके हो, तुम्हारे लिए इसमें निशानी है कि तुम्हारे साथ फिरौन वाला मामला होगा। निशानी क्या है कि तुम देख चुके हो कि दो ग्रोह आपस में लड़े थे, एक ग्रोह था जो अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह था जो शैतान की राह में लड़ रहा था, काफिर था, एक मोमिन था। और जो काफिर ग्रोह था वो मुसलमानों को अपने से दुगना देख रहा था, और ये देखना कोई खाम ख्याली नहीं थी, अपनी आंखों से देखना। तो बदर की तरफ इशारा, तो इसका मतलब है कि सूरह अनाम जब उतरी है तो बदर हो चुकी थी, तो बदर की तरफ इशारा करके कहा कि तुम अनकरीब मغلوب हो जाओगे, बदर में तुम्हारे लिए निशानी है कि उसमें क्या हुआ। बदर जो जंग है ये दुनिया की नादिर तरीन जंगों में से एक जंग है, ये वैसी ही जंग लगती है जैसी तालूत की जंग थी, कुछ भी नहीं, बस कुछ लोग चले गए, जंग जीत गए। ऐसे ही कोई बदर में 313 के करीब लोग थे, उधर 1,012 लोग थे, ठीक है। और यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैदान जंग में जब इकट्ठे हुए तो दो हिस्से हैं जंग के, एक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को थोड़ा दिखाया, कुरैश जब आए मैदान बदर में तो उन्होंने आते ही देखा अच्छा थोड़े से लोग हैं, कोई मसला नहीं, तो वो टिक गए कि हम कल मुकाबला करेंगे। लेकिन जैसे ही मुकाबले के लिए उतरे तो मुसलमान उनको अपने से दुगना नजर आए, यानी मुसलमान 313 थे तो 2,200 के करीब नज़र आए, 2,400 के करीब। अब क्या हुआ कि रोब बैठ गया, अच्छा इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं, नतीजा क्या निकला कि मार खा गए। तो अब ये जो पूरी अल्लाह ताला ने बताया कि ये मैं निशानी बता रहा हूँ कि कुरैश ने 313 लोगों को पहले थोड़ा देखा, अगले दिन डबल देखा, तो ये क्यों हुआ था? अल्लाह की मौजज़ा था, अल्लाह ताला ने ऐसा किया था। तो ये इस बात की निशानी है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँ। चुनाचे जुमला बोला कि वल्लाहु युअय्यिदु बिनसरिही मन यशा, अल्लाह ताला अपनी मदद से ताइद करता है जिसकी चाहता है। तो किसकी ताइद हो रही है? सहाबा की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इन्ना फ़ी ज़ालिका लइबरतुन लिउलिल अबसार, जिनको बसीरत हासिल है उनके लिए इसमें सबक सीखने का पूरा मौका है। अभी भी सुधर जाओ, इस चीज़ से निकल आओ कि तुम नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखा लोगे, इस ख्याल से निकल आओ कि बात उस वक्त मानेंगे जब उनकी हकीकतें समझ आ जाएंगी। नहीं, अल्लाह की तरफ से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का रसूल होना साबित हो चुका। बदर में ये वाक्य जो अल्लाह ताला यहाँ कोट कर रहे हैं उससे वाज़ेह हो रहा है, और कि यह अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास वाक़िया था। इस वाक़े को खुदा की तरफ से होने की वजह से मान लो कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे रसूल हैं। मैं इस दलील देने में दुनिया में अकेला हूँ और लोगों को मैं समझा नहीं पाता, उसकी वजह मेरी अपनी कोताही होगी कि नबी करीम सल्लम के अल्लाह की तरफ से रसूल होने को हिस्सी तौर पर साबित किया गया था। मैं वैसे ही मानने पे मजबूर हुआ उस ज़माने में जैसे मैं आप लोगों को मानने पे मजबूर हूँ कि आप बैठे हुए मेरे सामने, हिस्सी तौर पर साबित किया गया था, टेंजिबल तरीके से। यानी ऐसा नहीं है कि बातों से नबी सल्लम को मनवाया गया था, ऐसा नहीं। इस तरह के मौजज़ात दिखा के 23 सालों के अंदर कुरान इसको कहा मैंने फुरकान बना दिया नबी सल्लम की ज़िंदगी को। तो अबू बकर सिद्दीक के लिए नबी करीम सल्लम का अल्लाह का रसूल होना ऐसे ही साबित हुआ था जैसे उनके लिए मक्का और मदीना साबित थे, बिल्कुल ऐसी साबित हुआ था। कोई ख्याली बात नहीं थी, नज़रियाती बात नहीं थी, कोई इल्मी बात नहीं थी, कोई अकली बात नहीं थी। इसलिए फिर मैं जसारत एक और करता हूँ कि ख़ुद नबी करीम सल्लम की ज़ात गिरामी अल्लाह की भी निशानी है कि वो है, कि इस रसूल के ज़रिए से अल्लाह ताला ने दुनिया में मुदाखलत करके बताया कि देखो मैं हूँ, मेरे इस रसूल को हाथ लगा कर दिखाओ, नीचा दिखा कर दिखाओ। तो इस वजह से नबी करीम सल्लम रसूलों के अंदर आखिरी रसूल हैं, तो खुदा की जो टेंजिबल एविडेंसेस हैं उनमें से आखिरी निशानी है, जिसका एक परतो यहाँ थोड़ा सा दिखाया गया है कि बदर में कुरैश मक्का ने, और बदर में ये भी शामिल थे कुछ इनके लोग भी, कुरान ने इसको बयान किया है एक मौके पर कि यहूद के कुछ लोग भी शामिल थे, खाव पीछे साजबाज में थे या किसी तरह भी थे, तो बदर में उनका ये मुशाहिदा सबका था कि कल हमने 313 देखे हैं, अगले दिन हमने 2,500 देखे, तो ये किस वजह से था। और जब आदाद व शुमार जमा किए गए तो उनको मालूम था कि 313 लोग ही थे, कोई तादाद में इजाफा नहीं हुआ था। तो ये बात बताने के मकसद ये है कि अब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि ये अल्लाह के रसूल हैं, सच्चे रसूल, इसलिए इनको मानो और इनके ऊपर ईमान लाओ, नहीं मान लाओगे सत्तो गलबून, तो अनकरीब मगलूब कर दिए जाओगे और मार दिए जाओगे। अब वल्लाहु युय्यिदु बिनसरिही मन यशा, अल्लाह जिसके साथ चाहता है अपनी नुसरत की ज़रिए से तायद करता है। तो अल्लाह ताला की तायद किसके साथ है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के साथ है। इसलिए अब तुम्हें मानना पड़ेगा, लेकिन मानेगा कौन? उलिल अबसार, जिनके पास बसीरत है। तो यहाँ पे रोक लेते हैं, नमाज का वक्त भी हो गया है और वैसे भी वक्त हो गया।